ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में शालीमार बाग में शीश महल और अन्य पुरानी ऐतिहासिक संरचनाओं का अनावरण किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विभिन्न विभागों से संबंधित 7 स्थायी समितियों का गठन किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्ययनों में कोविड टीकों और युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। और दिल्ली सरकार कल से 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव का आयोजन करेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में शालीमार बाग में शीश महल और अन्य पुरानी ऐतिहासिक संरचनाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने पार्क के जीर्णोद्वार कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दिल्ली विकास प्राधिकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पार्क जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी की धड़कन बन जाएगा। श्री शेखावत ने नागरिकों से पार्क के संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का भी आग्रह किया।
ये केवल सरकारों के भरोसे न छोड़ करके हम सब सामूहिक रूप से जुटे, हम सब अपना दायित्व मानते हुए इस पर जुटे। इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी सरकार की बेशक होगी, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए ये समाज यहाँ पर जुटे। इस ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के काम करें। इस वैभव को बनाए रखने के लिए भी हम सब लोग जागरूक होकर के काम करें।
इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस ऐतिहासिक पार्क के जीर्णोद्वार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। श्री सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत जल्द इस पार्क में लगभग 300 साल पुराने जल चैनलों को भी बहाल करेगी।
ये केवल बाग नहीं है, बल्कि एक इतिहास का वो पन्ना है जिसमें दिल्ली के बनते और बिगड़ते उस दौर को देखा है जो अब एक कागज में अलमबंद हो गया है। इस इतिहास को जिस तरीके से फिर से उजागर करने की कोशिश डीडी और एएसआई ने की है, मैं उसके लिए उनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पार्क के संरक्षण के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने इस कार्य के सुचारू संचालन के लिए श्री सक्सेना का आभार भी व्यक्त किया।
मुझे खुशी है कि हमारी दिल्ली को, हमारी विधानसभा को मुख्यमंत्री की सेवाएं तो कभी नहीं मिली, परंतु हमारे एलजी महोदय ने वो सारी कमियां हमारी पूरी करी जिसका दायित्व मुख्यमंत्री का था, मंत्री का था, विधायक का था, उस सरकारी प्रशासन का था। वो सहयोग हमें कभी नहीं मिला था, पर एलजी महोदय का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिकायत पेटी में आई शिकायतों और सुझावों की आज समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह शिकायत पेटियां दिल्ली भर में हर डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय में लगाई गई थी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि 1 महीने के बाद ये पेटियां मुख्यमंत्री कार्यालय में ही खोली जाएंगी ताकि किसी भी तरह की हेराफेरी की संभावना न हो।
लोगों की जो शिकायत है सीधा सीधा मुझ तक पहुंचे जिस रूप में वो कहना चाहते हैं, और यहाँ पे मैंने 3-4 बॉक्सेस खुद से खोल करके भी देखे हैं, और मुझे लगता है कि जो सीधा संवाद है दिल्ली की जनता से राज्य की मुख्यमंत्री का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वो अपने मन की बात कुछ भी कहना चाहते हैं वो सीधा मुझ तक पहुंचे और उनकी कही हुई बातों पे सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बेहतरी मिलेगी और लोगों की समस्याओं की ओर संज्ञान भी लिया।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विभिन्न विभागों से संबंधित 7 स्थायी समितियों का गठन किया है। इन समितियों का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया की निगरानी, नीति समीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रत्येक समिति में अधिकतम 9 सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। विधायक कैलाश गहलोत प्रशासनिक मामलों के समिति के सभापति होंगे, वहीं शिक्षा समिति के सभापति उमंग बजाज बनाए गए हैं। समाज कल्याण समिति की जिम्मेदारी नीलम पहलवान को सौंपी गई है। स्वास्थ्य समिति के सभापति अरविंदर सिंह लवली होंगे। विकास समिति की राजकुमार चौहान, जन उपयोगी सेवा समिति की संदीप सहरावत और वित्त समिति की अशोक गोयल अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आज सचिवालय में विधि और न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में दिल्ली के समग्र विकास के लिए पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉपअप योजना के अंतर्गत किसानों को 3,000 रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे। ये बैठक मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित विभागीय समीक्षा बैठक की तैयारी के क्रम में आयोजित की गई। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने दक्षिणी दिल्ली के आयानगर गांव में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है। क्षेत्र में जल भराव की इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने एक मजबूत और तकनीकी दृष्टि से टिकाऊ ड्रेनेज योजना बनाई, जिसमें संडे मार्केट रोड के एक और आरसीसी बॉक्स ड्रेन का निर्माण और 1000 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइनों के माध्यम से वर्षा जल को पास के जंगल क्षेत्र की खाइयों तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। इस जल भराव के कारण स्थानीय बाजार, आवासीय कॉलोनियां, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कहा है कि कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौत के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के दो प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले मिले हैं। भारत में अचानक हृदय संबंधी मौतों की इन घटनाओं को आनुवांशिक जीवन शैली, पहले से मौजूद स्थितियों और कोविड के बाद की जटिलताओं सहित कई अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों संस्थाओं ने दो अध्ययन किए। पहले अध्ययन में लोगों की आयु 18 और 45 वर्ष के बीच थी।
पहले अध्ययन का परिणाम यह दर्शाता है कि कोविड 19 टीकाकरण से लोगों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ता है। वहीं दूसरा अध्ययन जो एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इस आयु वर्ग में अचानक मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। यह अध्ययन भारत में युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मृत्यु के बारे में अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के जोखिम में अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं की भूमिका हो सकती है। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है, कोविड टीकाकरण को अचानक मौतों से जोड़ने वाले बयान झूठे और भ्रामक है। आनंद कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों में कर्मचारियों नियोक्ताओं को 1,00,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जिस भी युवा को नई नौकरी मिली है उसे साल में 2 बार 7,500 रुपए दिए जाएंगे। श्री मांडविया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है।
ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए 5 साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था, उसके तहत एला स्कीम लाई गई है। एला स्कीम के द्वारा देश में जो यूथ नया जॉब में आता है उसको 1 साल में 2 किस्त में 7,500 रुपया डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने 66 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड बांदीकुई सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि ये परियोजना दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और जयपुर के बीच सीधा संपर्क प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा का समय 3 घंटे 45 मिनट से घटकर केवल 3 घंटे रह जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NGMC शनिवार को नागरिक सुविधा शिविर का आयोजन करेगी। इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को सेवाओं से जुड़ी जानकारी, सहायता और शिकायत निवारण प्रदान करना है। शिविर में बिजली कनेक्शन, संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, जल भराव, अपशिष्ट निपटान और सड़क मरम्मत से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह आयुर्वेदिक पाचन गोलियों की आड़ में गुप्त रूप से अफीम बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि गिरोह के दो प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनसे 472 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली अफीम जब्त की है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू होने के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के भारत मंडपम में हॉल संख्या 14 में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए नए प्रावधानों और बदलावों को दर्शाया गया है। कल से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 6 जुलाई तक चलेगी। इसका आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी के जरिए नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करना है।
पहला जो न्याय के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रावधान है, या 2 बार से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं हो सकता है कोर्ट में, या 60 दिन के भीतर एक्यूज आदमी की बार बार आप पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चेंजेज हैं, जिसमें कि ई सम्मन का जारी किया जाना, या मेडली पर जो एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ऑनलाइन डिलीवरी हो जाना, इन सभी को इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है।
प्रदर्शनी को देखने पहुंची आगंतुक ने इसकी सराहना की।
मेरा नाम इंदिरा है, मैं संगम यहाँ से आई हूँ। यहाँ की जो प्रदर्शनी है बहुत अच्छा है, नए नए कानून के बारे में, हर चीज की नॉलेज में बारे में बहुत अच्छा है। यहाँ की जो जो सीखता है वो आप समझे आए, यहाँ भी अच्छी चीजें हैं, सीखने के लिए बहुत चीजें हैं, हर कानून के लिए नई नई योजना है जो कि हमें बहुत अच्छी लगी है सर।
दिल्ली सरकार कल से 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव का आयोजन करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम में किया जाएगा।
इस महोत्सव में 50 से अधिक स्टॉल होंगे, जिनमें औषधीय, देशी, विदेशी और सजावटी पौधों की किस्में पेश की जाएंगी। महोत्सव में प्लास्टिक के जैविक अनुकूल विकल्प भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य स्थायी जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह वन महोत्सव हरित चेतना को पोषित करने में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली की वायु प्रदूषण शमन योजना का केंद्र बिंदु होगी। इस कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भर में 70 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत करना है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपना स्वयं का वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, जिसका नेतृत्व उप वन संरक्षक द्वारा सांसदों, विधायकों, पार्षदों, साथ ही नागरिक समाज समूहों, RWA, स्कूलों और प्रमुख नागरिकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राजधानी में आज कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में शालीमार बाग में शीश महल और अन्य पुरानी ऐतिहासिक संरचनाओं का अनावरण किया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता ने आज विभिन्न विभागों से संबंधित 7 स्थायी समितियों का गठन किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्ययनों में कोविड टीकों और युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। और दिल्ली सरकार कल से 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।